बोनस है और ये पावन इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में और उन लीलाओं का जिस घटना से संबंध है, ये यूं कहें कि पूरे विश्व में जितने भी प्रकार के तीर्थ हैं, जैसे प्रयागराज को सारे तीर्थों का राजा बोला जाता है, तो और ये उपाधि भी भगवान ने दी है प्रयागराज को, यह संगम होता है और तुम यहाँ तुम सारे तीर्थों के क्या हो, राजा हो, और जितने भी दूसरे तीर्थ हैं इस देश में हो चाहे विदेश में हो, तो ये जैसे आप सब लोग बैठे हो ना, तो आप जैसे तीर्थ हो सब, है ना, कोई जो है कोई कोई नदी है, कोई कहीं का तीर्थ स्थल है, कोई हरिद्वार है, इस प्रकार, तो ये सारे लोग टैक्सेस देते हैं अपने ना, अपने चढ़ावा या अपना धन्यवाद करने जाते हैं प्रयागराज को, क्योंकि वो राजा हैं, ठीक है। तो जितने भी ये रिवर्स हैं, ये तो फीमेल नेम्स हैं, इनके फीमेल फॉर्म में है, बाकी जो और तीर्थ स्थान है कोई पुरुष रूप में है, कुछ वैसे हैं, तो प्रयागराज जो है क्या है, राजा हैं सब, और बाकी जितने भी तीर्थ हैं ये उनको नतमस्तक होते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनके उनकी बात मानते हैं, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि जितने भी तीर्थ हैं, ये तीर्थ प्रयागराज के पास गए और कहा कि महाराज आपको तो भगवान नहीं बनाया, हम सबका राजा और हम सब लोग आप ही के पास आते हैं, आप ही हमारे परम श्रद्धे हैं, लेकिन हमने देखा कि ये वृंदावन कभी आपके पास नहीं आता, ऐसा क्या कारण है। प्रयागराज को भी लगा भैया राजा तो मैं हूँ, सारे तीर्थ भी मेरी बात सुनते हैं, सब मेरे पास आते हैं, तो ये वृंदावन क्यों नहीं आता, बात तो ठीक है भगवान ने मुझे बनाया है ना राजा। तो प्रयागराज गए भगवान कृष्ण के पास, कहा भगवान मेरी प्रार्थना है आपसे, कहते क्या, मैं पूछना चाहता था कि आपने मुझे राजा बनाया और ये सारे तीर्थ भी मेरे पास आते हैं समय समय पर, भारत के नहीं पूरे विश्व भर में जितने भी तीर्थ हैं सब आते हैं, लेकिन ये जो वृंदावन है ना ये नहीं आता मेरे पास। भगवान ने कहा भैया राजा मैंने तुम्हें बनाया है, ये सारे तीर्थ तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन वृंदावन तो मेरा घर है, ये तो स्वयं मेरा घर है, ये मेरे से अभिन्न है, ये कैसे आएगा तुम्हारे पास। तो वृंदावन जो है इन सब तीर्थों से कहीं ऊंचा है, ठीक है ना। जैसे हम एक श्लोक देशानंद से ले रहे हैं, इसमें महत्व बताया गया है धाम के विषय में बताया गया है। वैसे आप जानते हैं कितने प्रकार के जो धाम है, जैसे कई लोग जो चार धाम की भी यात्रा करते हैं, है कि नहीं, कितने लोगों ने की चार धाम की यात्रा, ठीक है, एक दो लोगों ने की, वेरी गुड। तो थी तो चार धाम कौन कौन से हैं, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका और बद्रीनाथ, ये चार धाम हैं। सबके लिए भगवान ने ऐसी ऐसी जगह पर धाम बनाया है ताकि सब लोग जो हैं उस तरफ के रहने वाले लोग कम से कम जगहों पर जाकर अपने को पवित्र कर सके। तो ये सारे के सारे धाम जो है भगवान से जुड़े हुए हैं, और जो भी व्यक्ति धाम में एंटर करता है तो बताया जाता है उसके सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसका मोक्ष, उसका मुक्ति का जो है रास्ते सारे खुल जाते हैं। तो बताया जाता है एक श्लोक है उपदेशामृत में, श्री रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, श्लोक का हम लोग केवल मतलब पढ़ेंगे। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। वैकुंठ सुना आप लोगों ने, वैकुंठ, कुंठ का मतलब, कुंठा का मतलब जहां दिक्कतें परेशानी है, कहां है ये भौतिक जगत, और वैकुंठ मतलब इस जगत से परे की जगह की बात हो रही है जहां पर भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार नारायण विष्णु इत्यादि सब अपने पार्षदों के साथ उस लोक में रहते हैं, जितने भी अवतार भगवान देते हैं, तो वो वैकुंठ कहलाते हैं, जो कि ब्रह्म ज्योति से ऊपर है। और इन वैकुंठों में बताया जा रहा है कि जो एक धाम हमारे यहां पर भी है, सुना आप लोगों ने मथुरा जगह सुनी, वृंदावन के पास मथुरा है आगरा से पहले, तो बता रहे हैं कि जो वैकुंठ है उससे ज्यादा महत्व किसका है आध्यात्मिक दृष्टि से, मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है। कैसे? वैकुंठ का तो मतलब ये हुआ जो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है वो लौट कर नीचे नहीं आता, लेकिन वैकुंठों में भगवान विष्णु नारायण लक्ष्मी के साथ बहुत ही अपुलेंट वे में ऐश्वर्यपूर्ण वर्षिप का आनंद देते हैं, ठीक है। और जिन रसों का वहां पर आस्वादन किया जाता है वो है जैसे ऐश्वर्य प्रधान जगह है और दास्य रस की प्रधानता है। लेकिन जो मथुरा है, मथुरा जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि सारे अवतारों के भी क्या है, स्रोत्र हैं, जिनसे सारे अवतार आते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी मैंने भगवान के अवतारों का वर्णन किया है इसमें जो कृष्ण है वो क्या है, स्वयं भगवान है, उन्हीं से सारे अवतार होते हैं। और ब्रह्म संहिता इत्यादि ग्रंथों में और शिवजी अपनी स्तुतियों में भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जहां पर प्रकट हुए, कहां प्रकट हुए, मथुरा में, कौन सी जगह में, जेल, शर्म कर जाते हैं, जेल में प्रकट हुए ना भगवान, तो कुछ सीखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जिस मथुरा जगह में प्रकट हुए तो वो जगह स्वयं कृष्ण जो कि सारे अवतारों के स्रोत हैं, फाउंटेन हेड बोलते हैं भगवान कृष्ण को, वो कृष्ण जहां प्रकट हुए तो वो सारे विष्णु लोगों से, सारे भगवान के अवतारों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वयं कृष्ण वहां प्रकट हुए, इसलिए मथुरा श्रेष्ठ है वैकुंठ से भी। हम गए थे एक बार मथुरा और हमने देखा कि मंदिर में बहुत सिक्योरिटी है, बहुत अच्छे ढंग से चेकिंग की जाती है, सर के बालों से लेकर मतलब पांव तक बढ़िया ढंग से, और एक बार नहीं दो तीन बार। फिर वो सिक्योरिटी का कारण क्या था कि कुछ समय पहले औरंगजेब ने या मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ा था और उसको आधा मस्जिद बना दिया था, तो इधर मंदिर है इधर मस्जिद है। और जब हम लोग मंदिर के अंदर एंटर किया तो हर जगह पुलिसमैन तो थे, और उस कारागार के अंदर गए जहां भगवान प्रकट हुए, तो कारागार आज भी है पर उतना पोर्शन वो भी बस मस्जिद के अंदर, ये बस ऐसा कर रहा है ताकि व्यक्ति जाकर दर्शन करके इधर से निकल के आ सके। तो वो स्थान है, वो जेल है जहां पर वसुदेव कृष्ण और देवकी मां थे, जहां कृष्ण प्रकट हुए थे। कई बार लोगों को लगता है कि अरे मस्जिद बन गई वहां और ये, और कई बार ना थोड़ा सा फील होता है कुछ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो उसमें पॉजिटिव क्या देखने का प्रयास करते हैं कि जिस धाम में बताया जाता है कोई पशु पक्षी भी चला जाए, है ना, और वो भी शरीर त्यागे तो उसको भी क्या है प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान का वैकुंठ प्राप्त होता है। हम लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ वो लोग हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, पशु में किसी भी योनि के हैं, अगर वो मथुरा में है या वृंदावन में है या जगन्नाथपुरी में है, क्योंकि वो धामवासी है। भगवान ये नहीं देखते कौन सी कास्ट का है, कौन सी क्रीड का है, कौन सी जाति का, कौन सी बोल गए, वो वहां के रोज मथुरा में, हम जा पाते रोज, कितने लोग रोज जाते हैं मथुरा, कोई नहीं जा पाता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज मथुरा में भगवान को प्रणाम करते हैं, चाहे वो नमाज के स्टाइल में करें लेकिन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है कितने लोग जो है वहां पर, हजारों लाखों लोग, जिस जाति का मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता या नहीं निकालना चाहते, ऐसी जाति के लोग भी जो है थामवासी हो गए बताइए, और वहां रोज भगवान को प्रणाम करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे स्थान को मथुरा को बताया गया क्या है, ये वैकुंठ से भी जो है ऊंचा है, और क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे, फिर बता रहे मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है। अब मथुरा में तो भगवान प्रकट हुए थे लेकिन वृंदावन में क्या किया था कृष्ण ने, अपनी सुंदर लीलाएं की थी। तो इसलिए जहां पर भगवान जो आनंद प्रदायक लीलाएं घटित हुई हैं, वो स्थान मथुरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर आगे बता रहे हैं, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण ने रास भी रचाया था। फिर बता रहे वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है। क्यों? क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममय लीलाओं का स्थल रहा है। वृंदावन में तो बाल लीला वगैरह भी की, भगवान ने ना कालिया को भी मारा, तो बाल लीलाओं में सांखी भी रहा है ना, वसुदेव कृष्ण के रूप में भी भगवान ने कुछ लीलाएं करी वहां। लेकिन गोवर्धन में किसी असुर को नहीं मारा, लेकिन जो यूथफुलनेस था भगवान का और उसमें राधा इत्यादि गोपियों के साथ भगवान ने वो सब प्रेम में लीलाएं करी। और फिर बता रहे हैं उस गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से उठाया था, दिव्य हाथ से, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से उठाया था। मतलब भगवान अपना प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन, कि एक तो उल्टा हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं ये तो मेरे उल्टे हाथ का काम है, तो भगवान ने कहा ठीक है, ये भी मेरा पर्वत उठाना भी मेरा उल्टे हाथ का काम है, और हाथ पूरा क्यों इस्तेमाल करूं, इसमें सबसे छोटी सबसे कमजोर उंगली को ऐसे नहीं लगाया, उसका जो नाखून है जो और भी कमजोर होता है, उस पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। फिर एक मिनट या चार सेकंड या ऐसे उसके लिए जैसे हमारे ओलंपिक में जो हमारे चर्च बॉडी बिल्डर जैसे उठाते हैं और पूरा जो है जैसे लगता है भूकंप आ गया, पूरा कांप रहे होते हैं, फिर एकदम खींच फेंक देते हैं 300 पाउंड 400 पाउंड उठाकर। भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रातों के लिए उठाया। और ऐसा नहीं है कि दूसरे हाथ से जो है सब लोगों ने कहा गांव वालों ने क्या करा, लकड़ियां लगा ली, अभी कुछ लगा लेते हैं को सपोर्ट करने के लिए, और भगवान दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे। मतलब भगवत्ता देखिए भगवान ना, अपना वो दिखा रहे, क्या कहते हैं उसे, अपना प्रकाश दिखा रहे। देखिए अगर देखना चाहते हो, आखिरी में जब वो इंद्र ने माफी मांग ली, थम गया सब कुछ, तो ग्वाल वाल बोले भगवान को, भगवान ने ठीक है सब जब जा सकते निकलो जल्दी से, तो कुछ लोग कहते हम निकले, लकड़ी लगा रखी है तुम निकलो ना गाना। उनको लगा शायद ये हमारी वजह से, हमने जो लकड़ियां लगाई है इसलिए गोवर्धन ऊपर हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम। भगवान कहते हैं अच्छा मैं निकलता हूँ, वो थोड़ा सा हाथ नीचे करा, उनकी लकड़ियां टूट गई सबकी। तो उनको लगा नहीं पहले हमें जाना चाहिए, इससे पहले कि हमको पोस्टर बनाया जाए जमीन चिपका जाए। तो इस प्रकार जो है ये जो लीला स्थली है गोवर्धन पर्वत की, ये सर्वश्रेष्ठ बताई गई। और कह रहे हैं फिर इन सबों में भी परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला कौन ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तो जो ये राधा कुंड है, इस राधा कुंड को अब हर चीज से सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया है। और कारण क्या है? क्योंकि यहां पर इस राधा कुंड में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की विभिन्न लीलाएं हुई हैं। ऊपर से भगवान श्री कृष्ण की जो असंख्य गोपियां हैं, उन गोपियों में जो सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, जिनका प्रेम कृष्ण के प्रति सारी गोपियों के अगर तुलना करने का प्रयास करें तो चंद्रमा और तारों की जैसे तुलना की जाती है। गोपियों का प्रेम भी अगर हम लोग डिस्कस करें तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा प्रेम नहीं मिलता। बड़े बड़े भक्तों के माध्यम से भी अगर प्रयास करें देखने का तो ऐसा, जैसे वृद्ध भागवतम में भी बताया जाता है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ भक्त है, तो कोई कहता है ध्रुव महाराज, कोई कहता है प्रहलाद महाराज, कोई कहता है हनुमान, फिर और आगे जाते हैं वैकुंठ, है ना, हर तरह के। फिर कहते हैं नहीं, गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ त्याग कर उन्होंने कृष्ण की सेवा कर कृष्ण को प्रेम किया, और कृष्ण ने भी कहा कि तुम गोपियों का प्रेम का मैं बदला चुका नहीं सकता। इसलिए कृष्ण उस प्रेम को भी, क्योंकि गोपियों को इतना भगवान ने जब विरह था भगवान से, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर जब द्वारका चले गए, पहले मथुरा गए फिर वहां से द्वारका चले गए, तो कई सालों तक, 100 वर्षों तक लगभग गोपियों ने विरह सहा। तो भगवान ने कहा मैं उसको रिपे नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भगवान कृष्ण, तो जो विरह था गोपियों का हृदय कैसा था उस समय कृष्ण के लिए, तो उसको समझ पाए कृष्ण उस विरह। तो इस प्रकार जो राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी, वास्तव में विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज बताते हैं कि राधा रानी का लिक्विड फॉर्म है जो राधा कुंड है, मतलब जो राधा कुंड का जल है। जैसे इस राधा कुंड जो एक तो भौतिक जगत में भौम लीला में भी राधा कुंड है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक वृंदावन धाम जो वैकुंठ से भी ऊपर है वहां पर भी क्या है, राधा कुंड एग्जिस्ट करता है। लेकिन वहां कैसे एग्जिस्ट करता है, तो बताते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठे हुए थे। देखिए जिस प्रेम की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन डीलिंग्स की या जिन भावों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे बुद्धि में नहीं घुसेगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए इन सब लीलाओं की चर्चा हम लोग इस प्रकार करते भी नहीं है, क्योंकि स्तर जो है हमारा वो उसको टच भी नहीं कर सकता, मतलब उसको मतलब समझ नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं समझ सकता। एक आत्मा का तत्व तो समझा नहीं जाता पूरी जिंदगी में, है ना, पूरा जीवन बीत जाता व्यक्ति का ये समझने में, ये सीखने में कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, और आत्मा की जो क्वालिटीज है वो समझने में, उसको जो समझ लेते हैं उसको सेल्फ रियलाइज कहते हैं। तो ये तो हो नहीं पाता पूरी जिंदगी में। तो जो आत्मा जैसे कंटेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो ब्रह्म ज्योति, फिर वो वैकुंठ, और भगवान वैकुंठ में विष्णु के उनके पार्षदों के साथ डीलिंग्स, और फिर गोलोक वृंदावन धाम, उस गोलोक वृंदावन धाम में 5 रस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, और वात्सल्य रस और माधुर्य रस, और उस माधुर्य रस में भी गोपियां और कृष्ण हैं, लेकिन उस माधुर्य रस में भी श्रीमती राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, तो ये ऐसे है जैसे नहीं समझ सकते, शब्द नहीं है, भौतिक एग्जाम्पल भी छोटे पड़ जाते हैं। यूं कहें कि समुद्र को हम लोग कितनी बूंदे हैं समुद्र में वो गिनने का प्रयास करें तो कैसे करेंगे, जो हमारे आई ड्रॉपर्स होते हैं ना, जैसे समुद्र में डालो, दबा के बाहर निकालो, फिर धीरे धीरे दबा कर उस बूंद को गिनो कितनी, 15 बूंद, फिर डालो, तो ऐसे समुद्र को गिनना बूंदों के हिसाब से, और श्रीमती राधा और कृष्ण की इन लीलाओं को समझना ऐसे ही। कई बार बताया जाता है ऐसे ये भी गिना जा सकता है, हो सकता है, यहां तक ये भी कहा जाता है कि समुद्र के किनारे जो रेत के कण है हो सकता है कभी वो भी गिन लिए जाए, कोई गिनने से इतना खुद के अंदर टाइमिंग को गिनेगा, बट मैं कह रहा हूं अगर फिर भी अच्छा लोग बताते हैं कि गिनने की कोई कोशिश करे और हो सकता है गिन भी ले, कहते तो भी भगवान श्री कृष्ण के गुणों को नहीं समझा जा सकता, उनके गुण कितने हैं नहीं समझा जा सकता, उनके गुणों को नहीं गिना जा सकता। तो बहुत इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कितने कितने ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की हैं जंगलों में, है ना, यज्ञ किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, वेदों का अध्ययन किया है, तब जाके कुछ हल्की सी अनुभव होता है, थोड़ा सा कि हाँ शायद भगवान ऐसे या भगवान के ऐसे गुण हैं थोड़ा बहुत। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं भक्त्यामान मुझे जानते, भक्ति के माध्यम से मेरे भक्त मुझे जान सकते हैं, प्रेमावती। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, तो धीरे 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 वो एक दिन कुछ मात्रा में भगवान को समझ जाएगा। भाई बलराम जी जो भगवान के साथ खड़े हैं, अनंत शेष के रूप में भी भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन अनंत शेष का मतलब जिनके फन दो से हजारों फन है, उन फनों से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, लेकिन आज तक कहते नहीं कर पाए, हर फन से कर रहे हैं, और जो जी क्वालिटी बोल रहे हैं दोबारा रिपीट थोड़ी कर रहे हैं कि इन्होंने जो क्वालिटी बोली इस फन ने वो सारी क्वालिटी को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन भगवान के इतने गुण हैं कि नहीं, हमारे पास तो लिमिटेड डिक्शनरी है, लिमिटेड वर्ड्स हैं, तो लिमिटेड वर्ड और लिमिटेड डिक्शनरी, लिमिटेड मटीरियल वर्ड में लिमिटेड क्वालिटीज हमने काउंट की, क्योंकि हमारी लिमिटेड बुद्धि है, तो कितना समझ सकते हैं इस लिमिटेड चीज। एक लोटे से आप पूरे समुद्र को नहीं नाप सकते। तो इस प्रकार उन लीलाओं को, उस कृष्ण को समझना इतना मुश्किल है, उसके बाद फिर श्रीमती राधा रानी को समझना है, उनके प्रेम को समझना नेक्स्ट वीक हो ही नहीं सकता। ये तो कई बार लोगों को लगता है अगर उनके बारे में पढ़ें, उनकी लीलाओं को और समझने का प्रयास करें, तो इसका मतलब ये लगता है लोगों को कि पढ़ने से और अपनी बुद्धि चलाने से शायद वो स्पिरिचुअल टॉपिक समझ आ जाएंगे। हमारी बुद्धि भी तो मटेरियल है ना, मन बुद्धि अहंकार भी तो इन्फीरियर एनर्जी है भगवान की, ये आंखें भी तो 5 तत्वों से बनी है, कैसे देख सकते हैं? तो इन सब चीजों से नहीं देखा समझा जा सकता। हाँ, लेकिन ये है कि अगर हम लोग भगवान के बताए गए मार्ग, उनके आचार्य के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, तो कुछ क्लिप्स मिल सकते हैं। और इसीलिए इस भक्ति के संसार में आज तक कोई कमी नहीं आई। जैसे लोग बोले ना, मेरे को भगवान नहीं दिखे, मैं समझ नहीं पाया तो इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं, हजारों साल से ऋषि मुनि पर्वतों पर, जंगलों में भक्ति कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, आज तक उन भगवान का गुणगान हो रहा है। सब लोग प्रयासरत हैं, किसी ने देख लिया, किसी का अनुभव किस स्टेज पर है हम बता नहीं सकते। जिनको कुछ अनुभव हो जाता है वो भी जो है शब्दों में उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये तो जिसको पता चल गया, जिसको समझ आ रहा है वही जानता है। इसलिए जैसे आप किसी से भी जाके पूछो, गुरु जी आपने भगवान देखे? आपने देखे क्या? तो नहीं देखे। लेकिन फिर आप भक्ति क्यों कर रहे हो? या और लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं, जो अनुभूतियां, जो रियलाइजेशन, या जो भगवान ने कहा है, उनको उस बात पर विश्वास है, उन आचार्यों की बात पर विश्वास है। और जब वो उस मार्ग पर चलते हैं तो उनको भी धीरे धीरे वो सब चीजें रियलाइज होनी शुरू हो जाती है। और जब वो चीजें रियलाइज होती हैं और वो मार्ग दिखने लगता है, जैसे आपको बोले जी यहाँ से जाइए, एक रास्ता बताते हैं जी कानपुर जाइए, है ना, तो माइलस्टोन्स होते हैं रास्ते में, है कि नहीं? आप पूछते भी हो और देखते भी, कानपुर इतना किलोमीटर, अब इतना किलोमीटर, अब इतना किलोमीटर, है ना, लोग जा ही रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ दिशा ठीक है, समझ आ रहा है, किलोमीटर्स कम होते जा रहे हैं। उसी तरह जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं वो लोग भी इनको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन सब अनुभूतियों के कारण वो आगे बढ़ते हैं, उस विश्वास के कारण आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज तक भक्ति में कभी आपने देखा नहीं होगा कि फुल स्टॉप लग गया जी, अब लोगों ने आना बंद कर दिया भक्ति में, बस जो पहले बैच गया तो गया, अब लोगों ने बंद कर दिया। बस जो उस बैच में, उस उम्र में, उस एज में जब महाप्रभु थे तब तक लोगों को समझ आया, उसके बाद तो बंद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब कुछ खत्म हो चुका होता तब। अब क्यों लोग सर मुंडाए घूम रहे? अब लोग क्यों जींस छोड़ के धोती कुर्ता में घूम रहे, है ना? क्यों लोग अब जो है वैष्णविज्म को अपना कर भगवान की भक्ति में आगे बढ़े? क्योंकि भगवान के नामों के संग में आते ही एकदम उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। शराबी हो, कबाबी हो, जुआरी हो, नशेड़ी हो, अचानक भगवान के भक्तों के संग में हरिनाम की शरण में आते ही उसके अंदर अपने आप ही इच्छा होती है कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए। पहले खूब इंजेक्शन लगाए, डॉक्टर्स के पास गया, रिएक्शन कैंप में डाला, घर वालों ने गालियां दी, पड़ोसियों ने खूब समझाया, माता पिता ने समझाया, बेटा छोड़ दे, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, है ना, किसी की बात समझ नहीं आई। लेकिन जब वो हरिनाम की शरण में गया तो पता भी नहीं चला कि कब वो वैष्णव बन गया, और पता भी नहीं चला कि पूरे कुल में सबसे अच्छा वैष्णव बन गया। पूरे कुल में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत कम समझ आती है चीजें, तो इतना अच्छा वैष्णव हो जाते, लोग कहते हैं, घर वाले कह रहे हैं कि क्या कर रहा भाई, ठीक है वो छोड़ दिया, वो अच्छी बात थी, वो खाना छोड़ दिया, ये भी अच्छा था, है ना, ये भी तुमने कर दिया, लेकिन अब से आगे कहाँ बढ़ रहा है, अब और आगे बच जा, भक्ति इतनी अच्छी नहीं है ना, तो ऐसे डर लगने लगते फिर लोग। तो भक्ति का मतलब लोग समझते हैं बस थोड़ा थोड़ा हो, बाकी सब कुछ चलता है। खाके भी पूरे मजे ले ले और फिर उधर भी कुछ, तो लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस भक्ति मार्ग में आज तक कमी नहीं आई, कोई फुल स्टॉप नहीं लगा, दिन ब दिन लोग अग्रसर होते जा रहे हैं भक्ति में। और इन सब टॉपिक, इन स्पिरिचुअल टॉपिक्स को जो समझ नहीं आते हम लोगों को, वो रियलाइज कर पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए श्लोक में जो है बता रहे कि जो राधा कुंड है, तो ये इसका जो प्रकटीकरण स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था, तो राधा कृष्ण इकट्ठे थे और राधा कृष्ण इकट्ठे रहते हुए कृष्ण को अचानक अपने आप धीरे धीरे वो राधा राधा बोलने लगे। राधा रानी के साथ ही है बट सेपरेशन फील, उनको लगा शायद नहीं है, तो राधा 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 बोल। अब राधा राधा बोलते हुए हम तो नहीं समझ पाएंगे इस बात को, फिर वही बड़ा बड़ा चक्कर के साथ, बट फिर भी जो लिखा हुआ आया था कि राधा राधा बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं और उनका जो कलर है, उनके जो फीचर्स हैं, मतलब इतना इंटेंसली वो श्रीमती राधा रानी का जप करने लगे, उसमें इतने अनुरक्त हो गए कृष्ण कि धीरे धीरे उनका फॉर्म गोरा हो गया। वो उन्होंने राधा रानी की जो है कांति ले ली, राधा रानी के फॉर्म में आ गए। क्या बोलते बोलते? राधा 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 राधा। और इधर जो है अब श्रीमती राधा रानी को कैसे होगा, वो कृष्ण कृष्ण बोल रही थी, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए अचानक वो भी इतनी मग्न हो गई कृष्ण के नाम में। एक्चुअली कृष्ण जब राधा बोलते हैं तो समझ लीजिए उनके हार्ट बीट चल रही है, उनके प्राण है श्रीमती राधा रानी का नाम, उनके प्राण है, उनकी नसों में दौड़ने वाला खून है श्रीमती राधा, उनकी जो श्वास है वो है श्रीमती राधा। तो कोई व्यक्ति उसके बिगाड़ तो रह नहीं सकता ना। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं जी हम लोग देखते हैं आपके मंदिरों में कृष्ण की शादी तो हुई थी रुक्मिणी से और साथ में खड़ी होती है कौन, राधा रानी, ये क्या चक्कर, ये तो आप प्रमोट कर रहे हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम को। तो गर्ग मुनि के अनुसार राधा और कृष्ण का भी विवाह हुआ था, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, भगवान श्री कृष्ण अगर एक वाइफ को खड़ी करेंगे तो 16,108 सब बोलेंगे तू हट मैं आऊंगी साथ में, है कि नहीं। तो भगवान ने किसी प्रकार के विवाद विवाद में पड़ने की कोशिश नहीं करी, तो उन्होंने क्या किया, जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का मतलब समझ रहे, अंतरंगा शक्ति, उनकी जो इंटरनल पोटेंसी जो श्रीमती राधा रानी के फॉर्म में है, जो कि तीन तरह से संविद, हलादनी और संधनी, ये तीनों शक्तियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। संविद शक्ति ज्ञान शक्ति है और संधनी शक्ति शाश्वतता प्रदान करती है कृष्ण को, है ना। कृष्ण थे, हैं, रहेंगे, बूढ़े कभी नहीं होंगे, हमेशा नव यौवनम च, तो उनकी शाश्वतता को मेंटेन रखती है संधनी शक्ति। संविद शक्ति भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है उसको हमेशा बरकरार रखती है, और हलादनी शक्ति कृष्ण को कितनी तरह से आनंद दिया जा सके, अर्थात आनंद देने वाली हलादनी शक्ति, तो ये राधा रानी ही है। इसलिए श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, शक्ति का मैं आपको एग्जाम्पल देते, जैसे मैंने किताब उठाई तो शक्ति लगी ना इसमें, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति को, इटर्नल पोटेंसी को एक फॉर्म दे दिया राधा रानी का। तो कौन है, श्रीमती राधा। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ इसलिए श्रीमती राधा रानी लगती है, नंबर एक। नंबर दो, श्रीमती राधा रानी ही कृष्ण को की मनोवृत्ति को जानती है और कृष्ण को कितने प्रकार से प्रसन्न रखा जा सके, कृष्ण को कितनी तरह से खुश किया जा सकता है, उन्हें कितनी प्रकार से आनंद दिया जा सकता है, तो जितनी प्रकार की हो सकती है उतने प्रकार की गोपियों के रूप में राधा रानी अपना विस्तार करती है। प्रस्ताव करती है कृष्ण को आनंद देने के लिए। अब कृष्ण मथुरा में आए तो उधर की गोपियां जो है वो भी उनका विस्तार है, तो एक अलग प्रकार का आनंद कृष्ण को प्रदान करें। फिर जो द्वारका में है रुक्मिणी सत्यभामा जम्बती इत्यादि, कृष्ण को पत्नी के रूप में एक लीगल फॉर्म में कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, है ना? गोपियां वाला मामला तो इलीगल चलता है ना, है ना? शादी किसी से भाई, प्रेम किसी के साथ, तो इधर जो है लीगल वे में कैसे प्रसन्न किया जा सकता है कृष्ण को, तो रुक्मिणी और फिर जितनी गोपियां वो भी क्या है उनका विस्तार है, ठीक है? और यही कृष्ण जब महाविष्णु नारायण और अन्य अवतारों में आते हैं तो यही श्रीमती राधा रानी उनके साथ लक्ष्मी के रूप में आती है, उनकी सेवा करती है, ठीक है? समझ आ रहा है? और यही कृष्ण जब इस ब्रह्मांड का संहार करने के लिए अपने विस्तार से शिव रूप लेते हैं, शिव तत्व, तो यही राधा रानी दुर्गा के रूप में उनके साथ आती है, ठीक है? तो ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है जो इस संसार को मेंटेन करती है। यही कृष्ण जब राम के रूप में है तो यही राधा रानी सीता जी के रूप में, ये तत्व बता रहा है। और इस प्रकार जो है राधा रानी जब कृष्ण का स्मरण करने लगी, उनका नाम लेने लगी, तो राधा रानी भी कृष्ण के फॉर्म में हो गई, ठीक है? आप देखते ना राधिका रमन हमारे यहाँ के लोग पूछते हैं, प्रभु जी हम कृष्ण काले क्यों और श्रीमती राधा रानी और इस तरह जो है उनके साथ कृष्ण सफेद क्यों, ये ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम क्या है आपके, ठीक है? तो जब कृष्ण बलराम जी के साथ है लीलाएं कर रहे हैं तो अपने ओरिजिनल कलर में, ठीक है? और जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ है और इंटेंस लव में है तो कृष्ण सामने से क्या हो गए, गोरे हो गए। तो ये वो राधा राधिका रमन, ठीक है? तो अभी जितने हमने कहानी बताई उसमें कृष्ण जो है राधा राधा बोलकर क्या हो गए, गोरे हो गए, तो वो फोटो खींच लीजिए और यहां हमने राधा राधिका रमन को लगा दिया। और उसके बाद फिर वहां कोई कैमरा मैन था नहीं, वो कैमरा मैन गिर गया ये देखकर, तो फिर दूसरी फोटो नहीं खींच सके, कौन सी, जो राधा रानी गोरी हुई काली हुई सांवली है कि नहीं? और फिर ये दोनों वो बोल रही है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये बोल रही है राधा राधा राधा, अब गोपियां देख रही है क्या हो गया भाई, तो कृष्ण जो है वो भागने लगे राधा के उधर उधर, इधर से राधा रानी भी इधर, तो कहां गए कृष्ण कहां गए कृष्ण, तो गोपियां बड़ी परेशान हो गई कि क्या करें। तो गोपियां गई कृष्ण के पास कि तुम जो है राधा राधा और बोलो तभी जो है राधा मिलेगी तुम्हें। और इधर एक भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी में कहते हैं कि भैया तुम राधा का नाम और इंटेंसली जप करो तो तुम्हें राधा रानी मिल जाएगी कृष्ण। अब वो कृष्ण है फॉर्म में किसमें, राधा रानी के फॉर्म में, तो ये इधर से फिर जो है राधा राधा बोलते हैं, मतलब राधा रानी कृष्ण कृष्ण बोल रही है और अचानक ये मिल जाते हैं आपस में। वो मिलते ही दोनों की आंखों से बहुत से अश्रु निकलना शुरू होते हैं, प्रेम के अश्रु, और इन अश्रुओं से एक कुंड बनता है, तो जो कृष्ण के आंसुओं से बना वो श्याम कुंड बनता है, और जो राधा रानी के आंखों से पानी निकलता है, जो अश्रु निकलते हैं वो राधा कुंड बनता है। बोलो राधा कुंड श्याम कुंड की। तो ये आध्यात्मिक जगत में राधा कुंड श्याम, और एक राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, वृंदावन में, गोवर्धन में। तो ये कैसे आया, ये कैसे प्रकट हुआ, बहुलाष्टमी के दिन। वैसे तो बहुला शब्द भी आप समझते होंगे, हम लोगों ने लीला देखी होगी, पढ़ी भी है, लिटिल कृष्णा में भी देखी होगी आपने, कि एक बहुत अच्छी गाय थी भगवान की, एक बार जो शेर जो है जंगल का राजा, वो शिकार करते करते किसी बगुला को पकड़ लिया उसने, तुम बच नहीं सकती हो। तो उस बेचारे ने कहा कि मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरे छोटा सा बच्चा है, मुझे उसको दूध पिलाना है। तो वो कहते पागल हो जाएगा, इतनी मुश्किल से पकड़ा दे, छुट्टी मांग रही। तो उसने कहा नहीं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं जाऊंगी अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी और अपने वादे पर वापस आ जाऊंगी, फिर आप मुझे मार लेना खा लेना। इस बगुला की बात को सुनकर शेर सोचने लगा, विश्वास करूं कि नहीं। तो कहते ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगी। तो ये चली जाती बगुला, अपने बच्चे को बड़े रो रो के दूध पिलाती है। वो कहती माँ तुम रो क्यों रही हो? तो बताते नहीं, पर फिर पूछती क्यों? कहते फिर बताती मेरा आखिरी बार दूध पी ले, फिर मैं जा रही हूँ, इसके बाद तो मेरा मुंह नहीं देख पाएगी। ये बातें सुनते हैं ब्राह्मण जिसकी गाय होती है, उसमें रहता है। तो जब जा रही होती है तो ये बगुला पहुंच जाती शेर के पास, आ गए तुम अपने वादे पर पूरी रही। इतने में बच्चा भी आता, छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो, आप मुझे खा लो, मेरी मम्मी को छोड़ दो। इधर से वो ब्राह्मण ही पहुंच जाते हैं, शेर को कहते देखो इस गाय को छोड़ दो, इस बच्चे को भी छोड़ दो और मुझे खा लो। वो कहता किसको खाऊं, बच्चे को खाऊं, इस बूढ़े को, ब्राह्मण को खाऊं, इस गाय को खाऊं, कमाल हो गया तीनों को खा जाता। तो इस प्रकार जो है वहां पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है, और उनका त्याग उनका प्रेम देखकर आप देखेंगे उसमें भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं, शेर को बुद्धि हाथ मारते कहते हैं ये तो क्या कर रही है, इतने हम्बल लिबोटी है मेरे, तुम्हें तो सेक्रीफाइस नहीं दिख रहा। तो वो कहता सॉरी मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। तो फिर उस गाय के नाम पर ही उसका सेक्रीफाइस देख कर, उसका त्याग देखकर, उनके भाव को देखकर भगवान ने कहा कि इस गाँव का नाम जो है, इस वन का नाम बहुला रहेगा, मतलब तब से बहुला के नाम से जाना जाएगा। तो बहुलाष्टमी के दिन ही एक घटना और घटी। वो जो हमारे हमारे नहीं मतलब कुछ कंस थे तुम्हारे तो ये कंस थे, ये बड़े परेशान थे जब से कृष्ण पैदा हो चुके थे। जिस भी असुर को भेजते थे और ऐसे खतरनाक असुर उनके पास, एक से एक जिन्होंने मतलब अच्छे अच्छे लोगों को मारा हुआ, और एक छोटे बच्चे को मारने के लिए भेजते थे बार बार, और जिसको भी भेजते थे वो बेचारा वापस नहीं आता था। ये बड़ी परेशानी होती थी, और सैनिक बार बार आता था सर झुकाकर, महाराज क्या हुआ? महाराज वो भी मारा गया, ओह अब किसको बुलाओ? फिर दूसरे को बुलाओ, कभी इसको, कभी अगासुर, कभी पूतना, पता नहीं कौन, सबको बुलाया। फिर एक बार किसको बुलाया? अरिष्ट असुर। कहते महाराज ये ऐसा खतरनाक असुर है, इसने अपने खतरनाक सिंगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंक दिया, ये तो अपने पैर के नीचे उस कृष्ण को यूं मार देगा आपके काल को, इसको भेजो। तो फिर अरिष्टासुर गया एक बैल के रूप में, और जब ये अरिष्टासुर पहुंचा वृंदावन, आपने देखिए वो कृष्ण आपका 50% जीवन खराब है। तो जब ये पहुंचा वहां पर तो इसने क्या कहा, बच्चे तो थे नहीं वहां पर, सारे गाय चराने गए हुए थे। तो अब वो वृंदावन इंतजार कर रहे हैं कब आएगा कृष्ण, है ना? तो पहले तो चेक करता रहे कौन सा कृष्ण है। तो जिस भी बच्चे के पास जाता था इतने बड़े बैल को देखता तो भाग जाता, मम्मी भाग जाता था बोले। तो देखा कि नहीं आ रहा है, तो उसको लगा कि अगर मैं इनको कष्ट दूंगा गाँव वालों को तो क्या होगा, कृष्ण अपने बाहर भागते हैं। फिर उसने ना मकान तोड़ने शुरू कर दिए, बांध तोड़ने शुरू कर दिए, कृष्ण को पता चल गया है ना, तो कृष्ण आया वापस। और उस समय जो है कहा कि ये तो गाय है, इसको चलाने चलते, चलो भैया। उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता, भाई मैं इतना खतरनाक हूँ, तुम मुझे गाय बोल रहे, मैं तुमको मार रहे हैं। और उसका जो शक्ति थी, उसका जो बल था, जो उसका आकार था, बताते हो उसकी पूंछ जब ऊपर होती थी तो बादलों को टच करती थी, इतना विशाल काय खतरनाक रूप से और कृष्ण को मारने के लिए भागता हुआ आया। भगवान ने कृष्णा कितने छोटे थे ना, बहुत छोटे से कृष्ण, और ये भागता हुआ आ रहा है मारने के लिए, और तो चिढ़ा दिया भगवान ने, तू अच्छा तेरे को तुम्हें गाय चराने ले जाऊंगा ऐसा करके। वो और खतरनाक हो गया, वो जब गुस्से में उसको थोड़ा सा और कुछ कर दो पागल होता वो। तो सुचासी आया सिंह संभालने ने भगवान का सिंह ही पकड़ लिया है ना, पकड़ने के बाद वो चाल हो गया, वो फिर घुमाया उसको ऐसे ऐसे, इतने बड़े बैल को खतरनाक ढंग से घुमाना शुरू किया और फेंका उसको 18 फीट की दूरी पर। अब देखो एक छोटा सा बच्चा जिसने पर्वतों को उठा उठा के फेंका है, जिस बैल ने, जिस असुर ने, वो एक छोटे से बच्चे से उसने उसको घुमा के फेंक दिया। अब उसका जो गुस्सा था वो बस अब क्या ना करते बस। फिर वो आया भागते हुए, फिर भगवान ने उसको पकड़ फिर फेंका था उसकी तो बुरी हालत हो गई थी, थोड़ी पटका मारा, पूंछ पकड़ी, घुमाया उसको और थाम करके मारा, उसका सींग तोड़ दिया और उसी सेंस उसकी मरम्मत करी और उसके प्राण निकाल दिए। बोलो रिष्टासुर की, मैंने बोला सब कंस की साइड है। तो अब जो है ये असल मारे गए और अब क्योंकि मारे गए, अब देखो भगवान कृष्ण जो किसी के आगे नहीं झुकते, जिन्होंने अच्छे अच्छे की जो है छुट्टी की हुई है, पूरा वृंदा उनकी जय जयकार करता है, गोपियां बस उनको वो चाहती हैं, लेकिन ये कृष्ण इनकी जो चाबी है ना वो किसके पास है, राधा रानी के पास। जब ये गया है ना महाराज, राधा रानी कहती अच्छा आ गया हैं, एक गाय का वध करके, गाय का वध किया, तो कहते नहीं नहीं गाय वाय नहीं थी भैया, वो तुम मालूम नहीं असुर था वो अरिष्टासुर, कहते जो भी था तो गाय के फॉर्म में, पश्चाताप करना पड़ेगा तुम्हें। याद है इंद्र ने भी वृत्तासुर को मारा था, ब्राह्मण था वो तो बेशक असुर था लेकिन उसने पश्चाताप किया था, तुम्हें भी करना पड़ेगा। वो कहते भैया ये क्या चक्कर हो गया, कहते क्या करना पड़ेगा मुझे, उन्होंने कहा हाँ इनकी तो रेल बनाते, उन्होंने कहा जाओ पूरे पृथ्वी पर जहां जहां पर भी हमारी तीर्थ नदी है सब पे जाके डुबकी लगाओ गोपियों को, बड़ा मजा आएगा, कृष्ण जाएंगे चक्कर काटने, क्यों अपना पाप धोने। कृष्ण ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं अभी बांसुरी बजाता हूँ और जितने तीर्थ हैं सबको यहीं बुला लेता हूँ है ना, सबका पानी इधर इकट्ठा हो जाए, मैं डुबकी मारूंगा मेरा पाप खत्म। बोला फंस गए, चलो ठीक है करो इतना तो करो। तो भगवान ने क्या किया, जोर से अपना पैर मारा जमीन पे धड़ाम करके और बहुत बड़ा खड्डा बना और फिर सारी नदियां पहुंची, रेवा जितनी प्रकार कावेरी गोदावरी नर्मदा सिंधु ना यमुना सब लोग पहुंच गए वहां पर, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि बताएं क्या सेवा है हमारे लिए। भगवान ने कहा देखो मुझे तीर्थ पर जाना था स्नान करने के लिए, तो मैंने तुम्हें इसलिए बुला लिया, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस कुंड को अपने जल से भर दो। उन्होंने कहा अभी लीजिए, तो उन्होंने तुरंत भर दिया। अब भगवान ने कहा लो भैया मेरा तो कुंड बन गया, ये लगाई मैंने छलांग, भगवान के दोस्तों ने भी लगाई छलांग, क्या जी हो गया हमारा पाप खत्म। कृष्णा जब भाग निकले कहते राजा जी मेरा तो पाप खत्म हो गया, मेरा पश्चाताप भी खत्म हो गया, अब जो है ना आपको पाप लग गया। कहते क्यों, कहते तुम तो एक तो ससुर का साथ दे रहे हो है ना, इसलिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, तो आ जाओ मेरे कुंड में डुबकी लगा लो तुम भी अपने पाप धो लो, हैं हम और तुम्हारे कुंड में तो तुमने पवित्र कर दिया, ना धो के उसमें हम अपना कुंड खुद बनाएंगे। कहते अच्छा, कहते मेरी जो सखी है ना हजारों लाखों सखी पहुंच जाती हूँ, कहते हम सब जाएंगे अपना कुंड बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जहां अरिष्टासुर ने बहुत तेज पैर मारा था वहां पर पहले ही खड्डा हो रहा था, तो उसी जगह को और खोद कर चूड़ियों से जो जो इक्विपमेंट मिले वहां पर सबने मिट्टी निकालना शुरू करा, और एक बहुत बड़ा जो है कुंड बना दिया। कहते हैं पानी ले लो, हमारे कुंड से पानी ले लो, पड़ा खाली पड़ा है। कहते थे पानी भी हम खुद लाएंगे। कहां से लाएंगे? मानसी गंगा से लाएंगे। वैसे अगर बात करें अंदर की, तो मानसी गंगा का पानी भी कृष्ण ने लाए थे। जब उनके माता पिता तीर्थ स्थान जाना चाहते थे, नंद महाराज और यशोदा की कहां जा रहे, कहते तीर्थ जा रहे बेटा। कहते तुम्हारे वियोग में मैं कैसे रहूंगा? कहते मैं तीर्थ ही बुला देता हूँ सारे। तभी भगवान ने आह्वान किया सारी नदियों का जल मानसी गंगा में, तो वही डुबकी लगा ली उन्होंने। तो अब जो है इनडायरेक्टली वही जल राधा रानी कह रही हम अपने अपनी मेहनत करके लाएंगे, और मटकों से पानी भरना शुरू किया और उस अपने कुंड में डालना शुरू किया। बड़ी मेहनत लग रही थी, मायावट कहां पर रहा वृंदावन वो, और इतनी दूर राधा रानी है ना, काफी लॉन्ग डिस्टेंस थी, सब ला रही मटकों से पानी। अब मटके से पौंड थोड़ी भर जाते हैं, तो भगवान ने कहा उसी टाइम इशारा करा, थोड़ी सी बांसुरी बजाकर उन सारी नदियों को फिर बुला दिया। कुछ समझाया नहीं, सबके हृदय में परमात्मा तो भगवान ही है ना, तो सारी की सारी नदियां पहुंची राधा रानी के पास। हे श्रीमती राधा रानी, हे ब्रजेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, और हम दुखियों पर, हम नदियों पर, हम तीर्थों पर उपकार करें। तो खूब प्रार्थना करती, स्तुतियां करती है। राधा रानी कहते क्या चाहिए? वो कहते हम चाहते हैं कि आप अपने कुंड को हमारे जल से भरें। तो इतने सुंदर ढंग से प्रार्थना करती हैं, तो राधा रानी कहती है ओके आ जाओ। तो राधा रानी का कुंड पूरा भर देते हैं। अब राधा रानी अपने कुंड में स्नान करती है, कहते लो जी हमारा स्नान। तो कृष्ण कहते अरे वाह कमाल है, तुम्हारा भी कुंड बन गया। कहते मैं भी डुबकी लगाता हूँ तो, है ना। तो राधा कुंड में भी डुबकी लगाते हैं। तो फिर लड़ाई झगड़ा खत्म है ना। तो फिर वो कहते ठीक है, कृष्ण कहते हैं मैं अपने दोस्तों के साथ रोज आया करूंगा और इस राधा कुंड में रोज स्नान किया करूंगा। राधा रानी कहती हैं मुझे भी ये शाम कुंड बहुत प्रिय है, इसलिए मैं भी जो है रोज अपनी सखियों के साथ इस शाम कुंड में स्नान किया करूंगी। तो आज भी नित्य लीला में दोनों इन कुंडों में जाकर स्नान करते हैं। और फिर बताते हैं कि क्योंकि भगवान, और दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि ये जो फॉर्म है, जो कुंड है और ये जो कुंड है, ये दोनों का लिक्विड फॉर्म है, क्योंकि रोज स्नान करते हैं और वैसे भी ये उस फॉर्म में है। अगर कोई भी व्यक्ति शाम कुंड में स्नान करता है या उसका जल अपने शीश पर धारण करता है, तो उसको कृष्ण प्रेम निश्चित रूप से मिलता है। और जो श्रीमती राधा रानी के कुंड में स्नान करता है या उसका जल को शीश पर धारण करता है, तो उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। राधा कृष्ण बता दें, जो व्यक्ति राधा 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 बोलता है या श्रीमती राधा रानी के शरणों में जाता है, तो राधा रानी उसको कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देती है। और जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, तो कृष्ण भगवान से श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा देते हैं। और फिर ये दोनों फॉर्म्स, राधा और कृष्ण के जो लिक्विड फॉर्म्स हैं, इस जगत में आपस में कैसे मिले, कैसे एक दूसरे का संग करें, तो कृष्ण और राधा बीच में से अब देखेंगे जाकर तो बाउंड्री है, जिससे कि दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों कुंड, दोनों का जल आपस में इकट्ठा हो रहा है। तो वो अपने विरह को अपने कुंडों के माध्यम से भी दूर नहीं रखना चाहते, इसलिए उसको मिलाकर रखा हुआ सदैव, कि वो एक दूसरे से मिलन कर सके। तो इस प्रकार ये राधा कुंड श्याम कुंड एग्जिस्टेंस में आया। और बहुलाष्टमी के दिन, इसलिए लोग आज के दिन रात के 12 बजे जो चला गया था उस समय वहां पर जाते हैं और वहां स्नान भी करते हैं, पूजा इत्यादि भी करते हैं। और कुछ लोग स्नान करते हैं और कुछ लोग, जिनको इंस्ट्रक्शन है, जैसे कई वैष्णव जो हैं राधा कुंड में जल में पैर नहीं रखना चाहते, क्योंकि विश्वनाथ चंद्र महाराज कहते हैं कि ये तो स्वयं श्रीमती राधा रानी का लिक्विड फॉर्म है, तो हम जल कैसे डाल सकते। तो कई लोग, कई भक्तजन है ना, क्या बोलते हैं उसको, रेस्पेक्ट की उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं कि नहीं हम जल नहीं डाल सकते। तो उस जल को वो शीश पर धारण करते हैं, आचमन करते हैं। बताया जाता है कि एक बूंद भी राधा कुंड का अगर जल का किसी के सर पर चला जाए, तो उसको राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है और वो लोग वृंदावन में चलते हैं। तो इस प्रकार ये राधा कुंड श्याम कुंड एग्जिस्टेंस में आए। इसके अलावा जो है बताते हैं कि जब वज्रनाथ थे, जो कि और बोते थे भगवान कृष्ण के। तो वो मथुरा के ही युधिष्ठिर ने उनको मथुरा का राजा बनाया था, तो उन्होंने कई विग्रहों की स्थापना की थी, बनाए थे, और उन्होंने जो है इसकी भी खोज करने की बड़ी कोशिश करी, और जब मिला राधा कुंड श्याम कुंड तो उसकी भी बाउंड्रीज बन गई। तो कई बार जब आप श्याम कुंड इत्यादि को देखें, जब जल निकाला जाता तो पुरानी बाउंड्री मिलती है नीचे, ये वजन आपके समय की है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीता और सब कुछ फिर से लुप्त हो गया। फिर चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए तो वो राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कौन सी चीज, सब चीज लुप्त हो चुकी थी। तो उस समय कुछ लोग जो गांववासी होते थे, तो कुछ फील्ड्स बैठी फील्ड्स थी वहां पर, उसको कारी खेत और गौरी खेत के नाम से जानते हैं, कारी मतलब सांवली और गौरी मतलब गौरी। तो राधा कुंड श्याम कुंड का वो एरिया था, तो वहां जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उस जल में स्नान किया और एक्सटेटिक हो गए, पूरी तरह नृत्य करने लगे, भावावेश में आ गए। तो उन्होंने बोला यही श्याम कुंड है और यही राधा कुंड है। और उसके बाद उन्होंने अपने और वैष्णव आचार्य को आज्ञा दी कि तुम सब लीला स्थलियों को ढूंढो। तो उन सब ने वो लीला स्थलियां ढूंढी आचार्य ने, जहां वहां जाकर दर्शन किए। और फिर रघुनाथ गोस्वामी जी इत्यादि ने जो राजा थे मान सिंह, उन लोगों से जो है राधा कुंड की और बाउंड्रीज को प्रॉपर बनवाया, सीढ़ियां बनवाई, तो ताकि अब लोग जो है वहां जाकर दर्शन कर सकें, राजवन इत्यादि कर सके। तो ये जो राधा कुंड है ये बहुराष्ट्रीय के दिन प्रकट हुआ। और हम जैसे कंडीशन सोल्स जिनके कोई योग्यता नहीं है, ना तो इस विषय में बोलने की और ना ही इसके इंटेंस चीज़ों को समझने की सुनने की, बट फिर भी भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उस जगह का दर्शन, उसके विषय में सुनना हम जैसे कंडीशन सोल्स का हो जाता है। तो पृथ्वी पर अगर कोई सबसे बड़ी कृपा है तो यही है कि हम विषय को सुन पा रहे, डिस्कस कर पा रहे। इसलिए ये जो धार्मिक जगत है, मथुरा का धाम है, वृंदावन गोवर्धन, ये कभी भी जो है इसका नाश नहीं होता। प्रलय के समय पे भी ये जो है एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये एटर्नल शाश्वत है। और फिर हम जैसे भक्तों को चाहिए कि जो जा नहीं पाए तो उसका स्मरण करें, उसके विषय में पढ़े, और फिर इसी से पढ़ने मात्र से हम लोग उसका स्नान करें, और हम लोग अगर कहीं से हो सके उसका जल प्राप्त हो जाए, ऐसे हम जल मंदिर में आया भी है हमारे पास, प्रयास करेंगे थोड़ी देर में आपको मिले कहीं ना कहीं एक ड्रॉप डालने के लिए सर पर, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से उसको रिस्पेक्ट कर सकें और राधा रानी से कृष्ण प्रेम की